जायाधान किये कम कलं कडहे नीच निरंजन नान मऊ ते परमात्मन मे।
व्यवहारण की विवक्षा से यह जीव पुण्य और पाप होता है इसका प्रतिपादन किया जा रहा है। ये उपव्यवहारे जीव डहो हे उपलहे विनुकम बहुवीय भावे परिणमये कर्म को उदय में पा करके यह जीव व्यवहार के अपेक्षा से अनेक प्रकार के भाव कर लेता है, कभी धर्म रूप और कभी अधर्म रूप परिणाम करता है। धर्म का अर्थ यहां पर कर्तव्य रूपता और कभी अकर्तव्य रूपता से ले लेना। धर्म में निवितरा धर्म से भी होता अनेक प्रकार के परिणाम संसारी प्राणी कर्म को निमित्त बना करके करता है। कभी कभी कर्म आत्मा के लिए कमजोर सिद्ध होता तो कभी कभी कर्म आत्मा के लिए बहुत बलजोर पहाड़ जैसा लगने लग जाता। यह भी एक प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विवक्षा को लेकर के ही कहा गया। द्रव्य का क्षेत्र का काल का भव का और भाव का ये अपने आप में बहुत बड़े काम करते हैं। इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध ही एक ऐसा है कि उसको हम नकार नहीं सकते। बहुत भूख लगी हो और रसोई के घर में आप बैठे एक घंटा निकालना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। लेकिन यहां पर बैठे रहेंगे तो आपका एक घंटा ज्ञात नहीं हो सकेगा। यह क्षेत्र का प्रभाव हो गया। आप देखो क्योंकि आपको भूख तो लगी या कोई चीज की इच्छा तो है लेकिन आपके भावों में ऐसी धारणा बनाई गई है यह तुम्हारे लिए खाद्य पदार्थ बहुत अच्छा है। तुम जान रहे हैं निश्चित बात है लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह तुम्हारे लिए खतरा है। भाव पलट गया वह चीज आपके लिए जहर हो गई। अभी तक तो अभी भी इच्छा थी लेकिन जो ही यह भावना बनाई गई हो गया। इस प्रकार द्रव्य को क्षेत्र को काल को भव को लेकर के कर्म अपना फलता रहता है। यानी इन्हीं सब रहस्यों को जान करके कौन से द्रव्य का कौन से क्षेत्र के साथ कौन से काल में कैसा प्रभाव पड़ता है इस विधा के माध्यम से वह उसके चक्कर से बच सकता है। इतना पुरुषार्थ का अपना क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि एकदम से दीवार से टकराने के लिए चले जाओ अनंत शक्ति है आत्मा के पास। निजित बात क्यों निर्भय होकर के टकरा ये तो शरीर के लिए भी हम कह देते हैं। शरीर के लिए भी हम पूछते शरीर में हम सख्त नहीं है क्यों नहीं है क्या सकते हैं। कोई भी जो है जिन्हें शरीर को पीट नहीं सकता ये नहीं कर सकता केवल ज्ञान यानी कार्मिक के शरीर क्यों अवधारिक शरीर की बात है। केवल ज्ञान होने के उपरांत केवल ज्ञान होने के उपरांत अभी पूर्व कोटि तक चिकना है। और कोई भी आप दुनिया से कोई चीज लाइए यंत्र शक्ति लाइए मंत्र शक्ति लाइए प्रलय लाइए और پانی لائیے، اگنی لائیے، ہوا لائیے، طوفان سے اڑا دیجیے، اڑ جاؤ گے، وہ نہیں اڑ سکتا. یہ تو اوزار کی تو بات کر رہے ہیں، پرم اوزار کی تو اپنے آپ میں لگا رہے ہیں. ہاں انت شکتی تو آ گئی، ان شکم اتنی شکتی ہے اس کے پاس کہ پورے کوٹی ورس تک اس میں کچھ بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا. یہ جب اس کی سیما بندی ہوئی ہے، کپور کے سامان اڑ رہے ہیں تو اس کے سامنے اڑانے کے لیے جاؤ، دیکھیں گے سوئیں اڑ گئے. نہیں انت شکتی، یہی تو کہہ رہے ہیں، انت شکتی شریر کے پاس نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات ایسی ہے کہ درگ کھیتر کال بھاؤ اور بھاؤ کو لے کر کے کیول گیان کھائک بھاؤ کے ساتھ نو کرم جو رہا ہے اس کو آپ پھونک نہیں سکتے. یہ اس کا تاپر ہے، کھائک بھاؤ کے ساتھ وہ پھونکنے میں نہیں آ سکتے، اس کا اس پرکار کھے نہیں ہو سکے. ہلکا ہے ٹھیک ہے، کپور کے سامان اڑ جاتا تو دھکا لگا اڑ نہیں سکتا. اب تو کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ درویہ کھیتر کال بھاؤ بھاؤ کو لے کر کے ہی آپ حساب کتاب لگائیں گے، یہ نشچت بات ہے. اور پرمان کے سکند ہے لیکن کارمن شریر ہے، تیج شریر ہے، اب پرتگھات ہے، کوئی پرتگھات اس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا، اس کے دوارا کوئی پرتگھات میں نہیں آ سکتا. نو کرم کے ابھاؤ کے کارن اس سمے اس کے دوارا دکھانبھوتی بھی اتنی نہیں ہو سکتی، یہ دھیان رکھنا. اب دیکھو کتنا انتر آ گیا، وہی آتما ہے لیکن نو کرم شریر کے ابھاؤ ہونے کے کارن وہ کرم کا ادے اس کے لیے ہانیکارک نہیں سدھ ہو رہا، ہانیکارک سدھ نہیں ہو رہا تو لابھ ہے کیا؟ لابھ نہیں بتا رہا ہوں، جیسے نو کرم کے ساتھ دکھانبھوتی ہوتی ہے ویسے ہی دکھانبھوتی وگرہ رسی میں نہیں ہو سکتی. اس لیے نو کرم کو لگایا گیا تھا. بالکل نو کرم کے مادھیم سے سکھ دکھ کی انبھوتی، نو کرم کے مادھیم سے ہرش وشاد، نہ ہی ڈائریکٹ آپ کو پنیہ کام کرتا ہے، نہ ڈائریکٹ کوئی پاپ کام کرتا ہے. ہدے میں آنے کے اپرانت بھی آپ کو ہرش وشاد ہوگا، نو کرم کے مادھیم سے ہی ہوگا، انیتھا نہیں ہو سکے گا. ہاں آپ میں تو ہرش وشاد ہوگا، اس کے اپرانت بھی وہ آپ کے دوارا انبھوت نہیں ہو سکے گا، انبھوت نہیں ہو سکے تو کاور کس کے دوارا ہوگا؟ لیکن اس کا متی گیان کے روپ میں انبھو لانے میں اس کا ورنن نہیں کر سکتے. ہوتا تو ہوگا جیسے مورچھت ویکتی ہے اور اس کے اپیوگ میں کیا کیا چل رہا وہ تو ان کو گیان نہیں ہے. جیسے کہ آنکھ کھولنے کے اپرانت درشن کب ہوتا ہے یہ یاد نہیں ہوتا، اپیوگ میں ہی ہوتا، وہ بھی سمویدن گیان کا تو ہوتا ہے، اس لیے گیان کی ہی سمویدنا مانی گئی ہے. لیکن جب کہ اپیوگ کی سمویدنا ماننی چاہیے تھی، اپیوگ کی سمویدنا میں آپ کو کوئی پرٹیکولر کوئی سی پدارتھ کا سمویدن نہیں ہو سکتا درشن اپیوگ کے ساتھ. اور مان لیجیے درشن اپیوگ کے ساتھ کچھ ہوتا بھی ہے، درشن اپیوگ ہو کر کے دو سمے ہو گئے مان لو، اس سمے کیسا انبھو ہوا، ہوا ہے کیا نہیں؟ تو آچار کہتے ہیں ہوا تو ہوگا لیکن کیسا، اس کا کوئی بھی ہم ڈیفینیشن نہیں بنا سکتے. اسی سے یہ سدھ ہے کہ ہم کچھ حد تک ہی کرموں کے دوارا راگ دوشادی پرینتی اور کچھ کاریاکار کرنے کی کھمتا رکھ سکتے ہیں. یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے دھرم. یہ تو بتا، ابھی تو ہم نے ادھارن یہ دیا وگرہ نے، ابھی وگرہ سے ہم نے شریر میں بیٹھے ہیں، متی گیان سے پہلے جو اپیوگ ہوا درشن اپیوگ اس کا بتاؤ ہمیں. प्रश्न कोई विकल्प नहीं, लेकिन विकल्प नहीं थे लेकिन संवेदन तो है, क्या होता होगा बताओ? होता है तो आगम के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन पहले बताओ वैसे संवेदन करके बताओ। अब ये बताओ दर्शन कब होता है? ज्ञान के पहले तो है, लेकिन वो कौन सा क्षण आता बताओ? नहीं होता है और आपके द्वारा ही होता है, उपयोग के बिना नहीं होता ही नहीं। अर्थ ये है कि आपके पीठ पीछे ही बहुत कुछ कार्य हो जाता है महाराज, सारा का सारा कार्य आपके उपयोग की पीठ पीछे ही होता है, कहने के लिए आप उसके स्वामी हैं। नहीं होता ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसा शरीर नौ कर्म के साथ होता वैसा नहीं होता, वैसे होता तो है। हाँ नहीं है ऐसा नहीं, या तो भीतर ही मानो है। अब आपको ये भी बताओ कौन से कषाय के साथ आप बोल रहे हैं? आंखें खोल देंगे तो चार कषाय में तो कोई ना कोई कषाय तो रहेगी। कोई तुम कौन से कषाय के साथ बोल रहे हो? कषाय की बात कर रहे हैं तो निष्कषाय की बात है, क्रोध होगा या मान होगा या माया होगी या लोभ होगा, बोलने का लोभ समझ लो, क्रोध के साथ भी बोला जाता है माया के साथ भी बोला जाता है। कौन से कषाय चल रही है इसमें? सूर्य जब पकड़ में नहीं आ रहे तो विग्रह गति में की बात आप पूछ रहे कैसे बताएं? ये सब जो है ना निमित्त निमित्त संबंध को लेकर के ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनको आप किसी प्रकार से रोक नहीं सकते। ये व्यवहारे जीवड़ ये लहे विनु कम एक प्रत्यक्षीभूत जीव व्यवहार नहीं हेतु लद्वा व्यवहार नहीं की अपेक्षा से हेतु को प्राप्त करके किम कर्म थी बहुविध भावे परिणमयी बहुविध भावे न विकल्प ज्ञान न परिणमती बहुत प्रकार के भाव में विकल्प ज्ञान के द्वारा परिणाम को प्राप्त होता तेन एव कारणेन धर्म अधर्म से बहुती थी। इसी कारण से यह आदि कभी धर्म रूप कभी अधर्म रूप परिणाम कर जाता है। तब यथा धर्म का अर्थ यहां पर पुण्य और पाप से एस जीव शुद्ध चेन वीद्रा चिदानंद एक स्वभाव अपनी यह जीव शुद्ध निश्चय की विवक्षा से वीद्रा चिदानंद एक स्वभाव वाला होते हुए भी व्यवहारेण वीतराग निर्विकल्प संवेदन अभावेन वीतराग निर्विकल्प संवेदन के अभाव के कारण यत उपार्जितम शुभाशुभम कर्म। अब देखो वीतराग निर्विकल्प संवेदन ज्ञान का जहां पर अभाव है वहां पर निश्चित रूप से शुभ अथवा अशुभ कर्म का बंध है, आगमन है। यह आगम कह रहा है जहां तक आपको बंध हो रहा है वहां तक निश्चित रूप से निर्विकल्प समाधि का वीतराग स्वसंवेदन का अभाव है, निश्चित है। जितनी मात्रा में हम मात्रा लगाते चले जाओ तो बहुत ही लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। जितनी मात्रा में कहेंगे तो हम वहां पर निगोदीय जीव को पहले रखेंगे आपसे पहले। सुनो हम इसलिए निगोदीय जीव को रख रहे हैं जितनी मात्रा में आपको अनुभव बंध हो रहा है उसके बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में एक इंद्रिय जीव को होता रहता है राज की मात्रा। अनंतानंद जीव पकड़ो तो भी अनंतानंद जी का बंध तो होता रहता है एक इंद्रिय में, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम। आप प्रत्यक्ष भी ले लो तो वो सब कम। ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य कहते हैं इसलिए होता है कि उसकी वह क्षेत्र की दशा ही ऐसी है। एक शायद समय से बनने के लिए इस अंतर्म में बनने वाला है, उस समय जा करके वह लब्धे पर्याप्तक निगोदिया जीव के समान स्थिति तत्व और अनुवाद तत्व वाला हो जाता है, जबकि करण लब्धि में ढला हुआ है, शायद समय दर्शन को प्राप्त करना है और सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार का अनुवाद कब कर सकता तो तब कर सकता। ऐसा क्यों? तो यह स्वभाव इसलिए यह निश्चित बात है कि वीतराग निर्विकल्प समाधि यदि है तो शुभ और अशुभ कर्म का अभाव है, बंद नहीं हो सकता। यदि बंद हो रहा है तो निश्चित कर लीजिए वीतराग को समझने ज्ञान वहां पर नहीं है।
बिल्कुल
होता है, भूमिका इसकी कौन सी है? बस निश्चित बंद प्रत्याख्यान हो, बिल्कुल चल रही, बिल्कुल चलने दीजिए उसको, बिल्कुल बंद होगा, छोड़ नहीं सकता, छूट नहीं सकता। ये हुआ ऐसा है, हम बता दें थोड़ी बहुत, बच्चे पास हो गए और खूब नाच रहे हैं, खेल टी पार्टी चलने लगी, बच्चों पास हो गए, बिल्कुल हमारा तो रिकॉर्ड है, हम फेल हो नहीं सकते, अच्छी बात है। बच्चों कितने नंबर में पास हो गए? 36 नंबर में, अच्छी बात है। कितने नंबर नहीं मिले हैं? कैसे हो, कितने नंबर नहीं मिले का मतलब नंबर कितने मिले? 36 है, ठीक है। कितने नंबर नहीं मिल पाए? अब पास का जो मूड था फेल हो गया, कितने नंबर में, कितने नंबर क्या? आपको 36 नंबर मिले, लेकिन रखे कितने गए थे नंबर? 100, तो सो रहे हो क्या? बोलो कितने नंबर में फेल हो गए? 64। इसी प्रकार महाराज सिद्धोपयोग की भावना के समय पर ऐसे कहा जाता है, निर्विकल्प है, बिल्कुल ठीक है, पास तो हो गए हम 36। वही तो कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि वह भी 36 नंबर में ऐसा हो रहा है जैसे पहाड़ को जीत करके आ रहा है, लेकिन प्रतिभा संपन्न 100 बाय 100 नंबर लेने की उम्मीद को लेकर के बैठा था, विश्वास लेकर के छाती ठोक करके कह रहा था, और उसके सामने जब नंबरों की संख्या आ जाती है और देखता है हद हो गई, रात ने एक लिया है, हाँ रात भर 300, तो ये वाली बात है, नंबर क्यों टूट गए हम सर को पूछना चाहते हैं, ठीक है पूछो, पर सर को पूछने के पहले पहले अपने सर को पूछो, हैं? अपने सर को, अफसर को, अपने अफसर को पूछो, क्या कहता हो? अफसर को पूछ, अर्थ यह है कि अपनी कमी की ओर नहीं देख पाता और भावना में इतना बह जाता है, इतना बह जाता है कि वह पास पास कहने लग जाता है, ठीक है लेकिन नंबर कितने मिले तो 36 है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि एक तिहाई पास है, दो तिहाई फेल, यही तो बात है। तो भावना ऐसे करता बैठा है, भावना ऐसे करता, रिकॉर्ड में जो बंद हो रहा है वह बताता है कि तुम्हारा अनुपात क्या है। किसी को हाथ नहीं देता, 96-97 बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छी बात, बुखार नहीं है, तो खाना क्यों नहीं खाया जा रहा है? ऐसा है वो हड्डी में है, अच्छा तो जो हड्डी में है वो हड्डी में तो अच्छी तो यूं पकड़ में तो नहीं आ सकता, तो नहीं है ऐसा कह दे, ऐसा नहीं, 96 नहीं सही, 98 भी है तो ठीक है वो, लेकिन वो छाने में ठीक नहीं है, जो हड्डी पर है वो खाना नहीं खिला रहा है, वो कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा उसको, इसलिए कि 98 से नीचे उतर गया इसलिए तो पुकार गया, ऐसा नहीं, यही तो खतरा है, 98 में रह जाना और 98.5 भी हो जा तो कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा, मई चल रही है, अप्रैल ठीक है, अप्रैल मई की बात तो रहता है, हाँ یہ پریت اور جون یہ مئی کے بھائی بھائی ہیں, پاس پاس رہتے ہیں. ایسا ایک آن نہیں, یعنی ایسا ہو جاتا تو سنور اور نجرا کی بات نہیں ہونا چاہیے. جیسے مان لیجیے چھٹے گن سنگ میں کوئی منی مہاراج آ گئے اور پرشست راگ کیا جا رہا, ایسی استھتی میں کیول بندی بند ہونے چاہیے, سنور اور نجرا نہیں ہونے چاہیے. گنستان بتا رہا ہے کہ وہاں پر سنور بھی ہے اور نجرا بھی, ہاں چونکہ پرورتک ہو رہی ہے اس لیے بند نشدھ نہیں کیا جا سکتا. شدھوپیوں کے ساتھ بند کا نشیدھ نہیں, اس لیے نشیدھ ہے کہ وہاں پر بیترا نرکل سمادھی ہوتی ہے. ویوہار نئے یہ اپارجتم شبھا شبھ کرم ہے, اس کو ہدے میں لے کر کے پنیہ روپ پاپ روپچ ہوتی, پنیہ اور پاپ روپ اپیوگ کر لیتا. اتر یدپی ویوہار نہیں نا پنیہ پاپ روپ بہت ہی व्यवहार नहीं किया पे जैसे पुण्य और पाप रूप होता है, फिर भी परमात्म अनुभूति अविनाभूत वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बहिर्द्रव्य इच्छा निरोध लक्षण तपश्चरण रूपा या तो निश्चय चतुर्विध आराधना सच्चा भावना काले साक्षात उपाधे भूत वीतराग प्रमाणंद एक रूप मोक्ष सुख अभिन्नत्वात् शुद्ध जीवे उपादेय. देखो क्या कहा, व्यवहारने की अपेक्षा से पाप पुण्यरूप होता है, फिर भी निश्चय नहीं की अपेक्षा से परमात्मा की अनुभूति के साथ जो अविनाभाव रखने वाला वीतराग सम्यक दर्शन होता है, वीतराग सम्यक दर्शन के साथ साथ वीतराग सम्यक ज्ञान भी होता है और वीतराग चारित्र भी होता है. उस समय और क्या होता है, बाहरी द्रव्य के प्रति कोई इच्छा नहीं होती, उसका निरोध लक्षण वाला जो तपश्चरण है उसके कारण निश्चय चतुर्विध आराधना होती है. आराधना चार प्रकार की होती है, दर्शनाराधना ज्ञानाराधना तपाराधना और चरित्राराधना. ये चार आराधनाओं के साथ ही निर्विकल्प समाधि चलती है. बच्चों को शांत बिठाइए, आज रविवार नहीं शनिवार है. हाँ, उसकी भावना के काल में साक्षात उपाधि भूत वीतराग परमानंद लक्षण वाला वह अभिन्न शुद्ध आत्म तत्व की आराधना चलती है, इसलिए शुद्ध जीव ही उपाधि सिद्ध होता है. शुद्ध जीव की उपाधि का इसलिए आधारित है, किस पर आधारित है, जिसको अभेद रत्नत्रय बोलते हैं. वेद रत्नत्रय में उपयोग की चंचलता रहती अथवा उपयोग में भेदभाव रहता है, किंतु अवेद रत्नत्रय के साथ उपयोग में एकाग्र जिसको बोलते हैं वह होता है. उपयोग की एकाग्रता के कारण ही वह दोनों प्रकार से आश्रमों से रहित हो जाता है. तो दोनों प्रकार के आश्रम का अर्थ यहाँ पर इतना ही ले लेना चाहिए, पुण्य और पाप दोनों प्रकार के आश्रम से जो व्यक्ति आश्रम और बंध को मीमांसित करता हुआ छानबीन करता है, गोमण सारादि ग्रंथों के साथ अब ज्ञात हो जाएगा कि पाप का और पुण्य का बंध कहां तक होता रहता है. जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं रखता वही कहता है कि यूं बैठते ही निर्विकल दशा होते ही पाप पुण्य दोनों दूर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है. गुणस्थान के अनुरूप जब अध्ययन करो तो ज्ञात होगा कि पाप और पुण्य इन दोनों का अभाव कहां होता है, तो दसवें गुणस्थान के ऊपर हो जाता है. एकांत रूप से पाप का आश्रय होता ही नहीं कहीं और एकांत रूप से पुण्य का आश्रय होता ही नहीं कभी. यदि होता है तो यथा क्या चारित्र के साथ ही एकांत रूप से पुण्य का आश्रय होता है, वह भी एक क्षण के लिए, वह टिक नहीं सकता. इसलिए प्राय करके यह जो धारणा बनाई जाती है सम्यक दृष्टि पुण्य भी नहीं करता, ये क्या पाप तो बहुत देर से छूट जाता है, पुण्य भी छूट जाता है, तो कहां छूट जाता बताओ. सम्यक दृष्टि वहां ठीक है, सम्यक दृष्टि कई प्रकार के होते हैं, कौन सी ऐसी पुण्य प्रकृति छूटी है सम्यक दृष्टि को बता दें चले जाएंगे तो ये ध्यान रखना वह बता ही नहीं सकेंगे, क्योंकि गोमण सर में उसका वर्णन है ही नहीं. और दूसरी बात है कि पुण्य कर्म की निर्जरा करने वाला सम्यक दृष्टि होता ही नहीं, बंध से तो वह रुक सकता है, वह भी ऐसा क्या चरित्र के साथ. लेकिन निर्जला तो वह कर ही नहीं सकता। योग निग्रह के द्वारा भी पुण्य प्रकृतियों की जो पुण्य अनुभागबंध है उनकी निर्जला नहीं हो सकती। यदौला का उल्लेख है कर्म सिद्धांत का। इसलिए जो जिन पाप पुण्य नहीं की ना आत्म अनुभव चित्ती ना, तो ये कहना इतना सरल बहुत है, लेकिन सम्यक दृष्टि पाप भी नहीं करता पुण्य भी नहीं करता, तो कौन से पाप प्रकृति का वह बंध नहीं करता और कौन से पुण्य प्रकृति का वह बंध नहीं करता, यह पूछना पूछा जाए तो एक भी उत्तर नहीं दे सकेंगे। एक प्रकृति तो आप दिखा दीजिए, उसकी भूमिका के अनुसार वह रुक जाए। ये बात सही है, बल्कि आचार्य ने कहा कि पुण्य प्रकृति का ही बंध करेगा वो। सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, पुण्य प्रकृति के विशेष प्रतिशत बंद ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए यहां पर निर्विकल्प वितराग को समझने का अर्थ अभी रत्नत्रय या निश्चय चतुर आराधना है, जो कि साक्षात उपादेय है और चार प्रकार की आराधना करने वाला असंयत सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। तपाराधना उसको बोलते हैं, बाह्य द्रव्य के प्रति कोई सी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। यदि इच्छा होती है तो निश्चित रूप से वह निश्चय तपाराधना नहीं मानी जाती है। तानि पुनः कर्माणि अस्तु भवन्ति जी, वह पुण्य और पाप दो प्रकार के भाव करेगा तो आठ प्रकार के बंध को वह कर लेगा। निश्चय का अर्थ अभेद, ऐसा है कि उपाधेय क्या है ये इसकी बात कही जा रही है। परमात्मा अनुभूति का अर्थ है कि अंतरात्मा होकर के परमात्मा का ध्यान करता है, इसलिए परमात्मा का अनुभूति करते हैं। अंतरात्मा की अनुभूति नहीं होती, अंतरात्मा बन करके परमात्मा की अनुभूति होती है, ये इसका अर्थ। कभी भी ये नहीं कहा कि बहिरात्म को हे ज्ञान तज अंतर आत्म झाइए, ऐसा नहीं कहा। हुई है फिर कितना परमात्म को ध्याय निरंतर, परमात्मा का ही ध्यान कर लीजिए, लेकिन कौन करता है? अंतरात्मा करता, अंतरात्मा का ध्यान नहीं माना जाता। इसी प्रकार यहां पर भी परमात्म शुद्धात्मा अनुभूति जो होती है वह अंतरात्मा की भूमिका नहीं होती, वही साक्ष यहां पर उपाधेय जिसके माध्यम से परम सुख उत्पन्न होने वाला है, जो निश्चय आराधना रूप है। कोई बात है आराधना में चार का विकल्प रहता है और आचार में पांच रहता है, यही अंतर हो गए। निश्चय पंचाचार्य कहो, निश्चय चतुर आराधना कहो, निश्चय रत्नत्रय कहो, निश्चय मोक्ष मार्ग कहो, शुद्धोपयोग कहो, स्वरूपाचर चारित्र कहो, शुक्ल ध्यान कहो, यथाचार चारित्र कहो, अप्रमद दशा परम समाधि कहो, और कौन सा शब्द है आवे सब, ये सब एकार्थवाचक है। अरविंद उत्तर वो तो याद करके बता दें, तानि पुनः कर्मान अस्तो भवन्ति जी कथयते, वह कर्म आठ प्रकार के होते हैं जो पुण्य और पाप भाव करेगा कौन देगा। ते पुन जीव जो अष्टविकम हवन जे जम्पिय जीवन भी आप सहा उलहन। हाँ, ये इस प्रकार के हे योगिन, उन भावों के द्वारा यह जीव आठ प्रकार के कर्मों को बांधता है। इन कर्मों से जो युक्त होता है वह कभी भी आत्मा के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता था, कर्म बांध करने वाला आत्म स्वभाव का संवेदन नहीं कर सकता है। तानि पुनर्जीवानाम हे योगिन अष्टव्यव कर्माणि भवन्ति, पुण्य और पाप के भाव होने से आठ कर्मों का ही बंद होता है। यही रेव कर्म भी जन्मपिता जीवा जिन कर्मों के द्वारा जीव जब बंधन को प्राप्त होता नहीं वह आत्म स्वभाव न बरते, आत्मा के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। देखो कर्म बंध होने की प्रक्रिया एक समय के लिए भी नहीं रुकती है। जिस प्रकार आप भोजन कर रहे हैं और फिर भी उस समय आपके अन्य भिन्न क्रियाएं भी चलती रहती है, उसी प्रकार यह भी क्रिया चलती रहती है। आहार करते समय में भी आपकी नाड़ी का धड़कन चलता रहता है। आप सो रहे हैं तो नाड़ी का धड़कन चल रहा है, आप चले जाते हैं तो नाड़ी का धड़कन चलता रहता है। ये क्रियाएं जब तक आपका जीवन है तब तक तो होती रहती हैं। इन्हीं क्रियाओं के द्वारा आप जीवनवान प्राणवान हैं इसे कहा जाता है। इस प्रकार बंद यदि हो रहा है तो ध्यान रखना आत्मा में वह स्थिर नहीं है, ये सिद्ध होता है। देखो ऐसा है कि उसके कर्तव्य की भूमिका में वह पुण्यबंध ही होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उसका उपयोग अभी टिका ही नहीं, उड़ते कैसे नहीं है। कह रहा अभी नाड़ी में तो बताया ना कि दो हड्डी का बुखार विकल्प में नहीं आता, थर्मामीटर में नहीं आता। बुद्धिपूर्वक कर्म बंद किया था इसलिए वो भीतर चला गया, इतना भीतर चला गया उसको निकालने के लिए अब मोती जीरा बोलते हैं क्या आपको बोलते हैं उसको मोती जीरा, जब तक मोती नहीं खाओगे तब तक वो निकलेगा नहीं। और कोई जा नहीं सकता वहां तक, मोती जाए, मोती कैल्शियम है, हड्डी भी कैल्शियम से बनते बताते हैं है? इसीलिए वो हड्डी मजबूत हो जाए। बड़ा विचित्र है ये। अच्छा तद्यथा ज्ञानावरणादि नए कर्माणि अष्टौ एव भवन्ति, ज्ञानावरणादि के अपनी चर्चे कर्म आठ ही होते हैं। यही जन्मपिता संत जीवा जिनके द्वारा बंध को प्राप्त होते ये जीव सम्यक्वादि अष्टविद स्वकीय स्वभाव न लभते। सम्मत नान दंशन वीर सुगमत एव अवगनम, इस प्रकार जो आठ गुण है इन आठ गुणों को वह जीव प्राप्त नहीं कर सकता। तद्यथा सम्मत नान दंशन वीर सुगमत एव अवगनम अगुरलोह मौपावाहम अठ गुण सिद्धानम। ये सिद्ध भक्ति आती है आपके यहाँ, उसमें प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं आप, इसमें आठ गुण हैं। ये निकल चुके हैं अब निकलेगी नहीं, ये चर्चा कल चल रही थी, चर्चा तो कल की आज हो सकती है लेकिन जो निकल चुकी है शायद भाव वो पुनः निकलेगी नहीं, परिणाम नहीं होगा, इसलिए कि वह तंकोत्कीर्ण रह गया, इसलिए कि उसमें कोई खिलाफ पार्टी नहीं है, अगेंस्ट कोई होता तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। हाँ अर्थ पर्याय अगर लोग गुण में ही निकलते हैं अन्य किसी में नहीं, ये आगम का उल्लेख है वो अलग नहीं यार, ये जो है नीच गोत्र के या गोत्र कर्म के क्षय में जो उत्पन्न हुआ है वह तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। हाँ ये अनंत गुण है और उन अनंत गुणों में ही होती रहती है अन्यत्र नहीं, उसी की वजह से द्रव्यत्व जो है कायम है, द्रव्य परिणामशील होता है, अन्य शेष गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। यही कल कहा था आज भी यही कहते हैं। शुद्धात्मादि पदार्थ विषय, शुद्धात्मादि पदार्थ विषय में वीज विपरीत अभिनिवेश रहित परिणाम, विपरीत अभिनिवेश रहित परिणाम शायद सम्यक माना जाता है। जगत्रय कालत्रय वर्ती पदार्थ की उपत विशेष परिचिति रूपम केवल ज्ञानम बनने से, तीन लोक संबंधी तीन काल संबंधी पदार्थों को एक साथ वह जानता रहता है इसलिए वह केवल ज्ञान माना जाता। वहीं पर सामान्य परिचित रूपम केवल दर्शन बनने से तत्रैव पुत्र आत्मा में नहीं, वो कहते हैं जगत्रय और कालत्रय वर्ती पदार्थों में जो सामान्य परिणति होती है उसकी परिचिति केवल दर्शन के हाथ में है, और जगत्रय कालत्रय वर्ती जो पदार्थ विशेष हैं उनकी परिचिति केवल ज्ञान के हाथ में है। इस प्रकार केवल ज्ञान एक हाथ है और केवल दर्शन एक हाथ है, दोनों हाथ से वह उपयोग वान आत्मा काम करता है। ऐसा है हाँ, तीन लोक संबंधी विशेष और केवल दर्शन तीन लोक संबंधी सामान। यदि केवल ज्ञान ही काम करता है अधूरा काम हो जाएगा, तीन काल में से डेढ़ काल संबंधी हो जाएगा, डेढ़ लोक संबंधी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक साथ तो ये बात है, एक साथ बताए ना कल दर्पण का उदाहरण देकर, उतना ही होता और कोई नहीं होता। वो काला पंच पकता नहीं, क्या परिवर्तन है उसका नाम, उसकी पर्याय नहीं हो। ये गे का झलकन है, वो प्रतिबिंब है, वो स्वयं का परिणाम नहीं है, वो इसलिए उस समय कुछ इस प्रकार का पर्याय नहीं। जी हाँ, बताया गया अर्थ पर्याय को सूक्ष्म रुजु सूत्र और स्थूल रुजु सूत्र ने, स्थूल रुजु सूत्र ने का विषय क्या बनेगा, स्थूल रुजु सूत्र ने क्यों बनाया, तो ये क्यों आ गए रुजु सूत्र में स्थूल क्यों। रुजु सूत्र का अर्थ यह होता है वर्तमान को पकड़ना, वर्तमान एक समयवर्ती है, किसने कहा हा? जैसे मनुष्य पर्याय है, बस मैंने इसी प्रकार अर्थ पर्याय के लिए कहा। पूर्ण रुजु सूत्र ने का विषय क्या बनेगा, वर्तमान बनेगा, तो वर्तमान जो है वो आचार्य कहते हैं एक भाव से लेकर दूसरे भाव तक दो का बीच में वह सारा सारा स्थूल रुजु सूत्र का विषय बनेगा। इसलिए स्थूल रुजु सूत्र का जो विषय बनता है वह अंतर्मूलवर्ती पर्याय का बनता है और सूक्ष्म रुजु सूत्र का विषय जो बनता है एक क्षणवर्ती पर्याय का बनता है। एक क्षणवर्ती पर्याय का जो बनता है वह अन्य गुणों में न बन करके केवल उसी में बनता है, ये कहा गया है। और एक क्षणवर्ती जो पर्याय होते हैं वह शुद्ध होती है, ये कहा गया है। और अनेक समयवर्ती जो पर्याय होती है वह पर्याय होते वह शुद्ध नहीं होती किंतु अशुद्ध होती है। अशुद्ध जो होती है वह नैमित्तिक होती है, वैभाविक होती है, ये कहा गया। इस विषय को थोड़ा सा जोड़ लो आप। अच्छा, अतीन्द्रिय ज्ञान तत्रैव केवल ज्ञान से अनंत परिचिति शक्ति रूपम अनंत वीर्यम बनते, उसी ज्ञान में और दर्शन में जो अनंत परिचिति रूप जो शक्ति है वही अनंत वीर्य मानी जाती है। अतीन्द्रिय ज्ञान से सूक्ष्मत्व बनते, अतीन्द्रिय ज्ञान का जो विषय होता है वह सूक्ष्मत्व होता है, वह अन्य किसी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। एक जीव अवगाह प्रदेश अनंत जीव अवगाह दान सामर्थ्यम अवगाहनत्व, एक जीव के द्वारा जो अवगाहित प्रदेश है असंख्यात उसमें अनंत जीव रह सकते हैं, इसको बोलते हैं परम अवगाह अवगाहनत्व। एकांतेन अगुर्लघुत्वस्य अभाव रूपेण अगुर्लघुत्वं मन्यते, ये क्या हुआ, एकांत रूप से अगुर्लघुत्व का, अच्छा गुरु लघुत्व का, एकांत रूप से गुरुत्व और एकांत रूप से लघुत्व, इसका अभाव रूप से जो होता है वह अगुर्लघुत्व माना जाता है। दो की गोत्र पर गोत्र एकांत रूप से न नीच है और न उच्च है, नीच और उच्च है दोनों के अभाव होने के उपरांत ही वेदनी कर्मोदय जनित समस्त बाधा रहितत्वात् अव्यवहार गुणस्य इति। अब वेदनी कर्म चाहे साता हो चाहे असाता हो आग उड़ता हमेशा बनी रहेगी, सेठ साहूकारों को साता की आग उड़ता रहती है और जो गरीब रहते हैं उनको असाता की आग उड़ता रहती है, कुल मिलाकर के दोनों आकुल व्याकुल हैं, है क्या नहीं। निश्चित बात है, है। इसलिए साता को चाहनी नहीं चाहिए और असाता से भी डरना नहीं चाहिए। असाता भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, साता भी आता है। साता के द्वारा भी और असाता के द्वारा भी बाधा तो आत्मा को पहुंचती रहती है, वही बात यहां पर कह रहे हैं। इदम सम्यक्वादी गुणाष्टकम, यह सम्यक्वादी जो आठ गुण है, संसार अवस्थाया किमपि केनापि कर्मणा प्रच्छादितं तिष्ठति। ये सारे सारे जो गुणाष्टक हैं संसार दशा में किसी न किसी प्रकार से कर्मों के द्वारा प्रच्छादित रहते हैं, यथा तथा कथ्यते। जैसे सम्यक्त्वं मिथ्यात् कर्मणा प्रच्छादितं, सम्यक् मिथ्या कर्म के द्वारा प्रच्छादित है। केवल ज्ञानम, केवल ज्ञानावरणेन जंपितम्, केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावरण कर्म के द्वारा ढका हुआ। देख लो, ध्यान रखो, आपके पास ज्ञान तो है लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा और केवल ज्ञानावरण कर्म को सर्वघाती माना है। जो सर्वघाती प्रकृति होती है वह एक अंश को भी उगाड़ नहीं देती। इसको बोलते हैं सर्वघाती। देशघाती उसको बोलते हैं, देशघाती पूरे रूप से गुण को समाप्त नहीं कर पाते। इसलिए केवल ज्ञानावरण जंपितम, केवल दर्शनम, केवल दर्शनावरण ने जंपितम, अनंत वीरम वीरांतराय रूपेण प्रच्छादितम। अनंत वीर, वीरांतराय कर्म का उदय चल रहा। इसलिए इस संसारी प्राणी को वीरांतराय कर्म का उदय कभी भी नहीं रहता। रहता है क्या बताओ? इस संसारी प्राणी को वीरांतराय कर्म का सूक्ष्म कभी भी उदय कभी भी नहीं रहता है। उदय नहीं रह सकता। वीरांतराय कर्म का उदय रह जाएगा तो कभी उठ नहीं सकोगे, बैठ नहीं सकोगे, श्वास नहीं ले सकोगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्ञानावरण कर्म का और दर्शनावरण कर्म का उदय नहीं चलता। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के पीछे जी कथनचित तो हम वैदिक भाव कह सकते हैं, लेकिन वीरांतराय कर्म का कभी भी उदय चलता नहीं। वीरांतराय कर्म का तो सूक्ष्म चलता। हम ये कह रहे हैं कि वीरांतराय कर्म के उदय के कारण नहीं होता, क्षयोक्षम ही हमेशा चलता। हाँ, ये कह दो, उसका ये कह दो अनंत, इसलिए अंत में जाकर कहा जाता अनंत ज्ञान को नहीं होने देना। तो ज्ञानावरण कर्म का ही काम नहीं है, वीरांतराय कर्म का भी काम है। हैं? वो सभी चीजें मानो, लेकिन उसमें क्षयोक्षम नहीं होता, उसमें तो उदय ही माना जाता है। केवल ज्ञानावरण कर्म का जिस प्रकार सर्वघाती प्रकृति में गिना है, उस प्रकार वीरांतराय कर्म के जो पांच हैं उनमें किसी भी प्रकार से ये विभाजन नहीं किया। अब देखो, ये ध्यान रखना, अंतराय कर्म को इन्होंने घातिया कर्म घोषित करते हुए भी बाद में क्यों रखा? घादी भी अघादी और अघादी भी खादी, वेदनी कर्म अघादी होकर के भी खादी कहा, बीच बीच में रख दिया। और वीरांतम अंतराय कर्म को घाती होते हुए भी अघादी क्यों कहा? कि वह पूर्ण रूपेण गुणों का नाश नहीं कर सकता। इसलिए कथनचितम ज्ञानावरण कर्म में तो केवल ज्ञानावरण कर्म को तो सर्वघाती मान लेते हैं, लेकिन अंतराय कर्म में पांचों जितने भी होता तो क्षयोक्षमिक ही हैं। वीर कुछ न कुछ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो क्षयोक्षम ज्ञान मिलेगा, क्षय ज्ञान नहीं मिलेगा। क्षय ज्ञान को ढकने का काम केवल ज्ञानावरण का। कौन सी जगते? यूं कह दो, जानने की और देखने की शक्ति लीजिए, इसे कह दीजिए, इधर उधर की बात नहीं कर दीजिए। जानने की शक्ति, देने की शक्ति है तो सही, ज्ञानावरण के कर्म की वजह से। हाँ उसके साथ तो ये लगा हुआ है, इसकी कैपेसिटी तो नहीं रहती है। वीरांध्रकरण का सूक्ष्म भी उसके साथ अनिवार्य होता है, लेकिन वीरांध्रय कर्म का सूक्ष्म एकांत रूप से सूक्ष्म के रूप में ही रहता, ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं जिसको सर्वघाती घोषित कर दिया। पांच है ना इसके उत्तर भेद, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीरांतराय। अब वीरांतराय को तो इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये सर्वघाती होती है, देशघाती, इसलिए पूरी शक्ति इसमें नहीं होती। उन्होंने हेतु दिया गोमठ सर में कहीं कर्मकांड में, घाती होकर के भी ये आघाती है, और ये वेदनी कर्म आघाती होकर के भी घाती है मोह के कारण। चलिए, अनंत वीर्यंत्रेण प्रच्छादितम्, अनंत वीर्यंत्रेण प्रच्छादितम्, सूक्ष्मत्व आयु कर्म आयुष्क कर्मणा, सूक्ष्म जो है आयु कर्म के द्वारा प्रच्छादितम्, तस्मादित चेत विवक्षित आयु कर्मोदयन भवांतरे प्राप्ते सति अति इंद्रिय ज्ञान विषय सूक्ष्म त्यक्त्वा पश्चात इंद्रिय ज्ञान विषय होती थी। क्योंकि विवक्षित आयु कर्म के उदय से, यानी जिस भाव में जा रहा है उसी कर्म का उदय होएगा। अति इंद्रिय ज्ञान का विषय है वो, कौन सा कर्म का उदय है, नरक आयु का उदय है, तो कोई दिखता तो है ही नहीं, अति इंद्रिय ज्ञान का विषय हो जाता है। इसलिए सूक्ष्मत्व को छोड़ करके वह इंद्रिय ज्ञान का विषय हो जाता ना कि हो जाता, इसलिए अवगाहन शरीर नाम कर्मोदय प्रच्छादितम्, अवगाहन ये शरीर नाम कर्म के उदय से कर्मोदय ये गड़बड़ है, यहां पर गड़बड़ होगा, क्या गड़बड़ है बताओ, बताओ पंक्ति पढ़ रहे हैं वहीं पर देख लो। अवगाहन कर्म अवगाहन गुण को बताया जा रहा, शरीर नाम कर्म का उदय से वह प्रच्छादित है, ये कहां तक ठीक है, चौदवे गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं चलता, फिर भी अंतर मुहूर्त के लिए अवगाहन तो प्रच्छादित है, इसलिए यहां पर उदय शब्द न रख करके शरीर नाम कर्म के वजह से शरीर नाम कर्मणा प्रच्छादितम ये लिखना चाहिए। क्योंकि भाव तो वही है, लेकिन शब्द का अर्थ दूसरे जगह निकालेंगे तो भाव ये नहीं आएंगे, हाँ कैसे कह दो, नाम कर्म के वजह से शरीर न लेकर के नाम कर्म भी कह सकते हैं, अथवा शरीर कर्म शरीर नाम कर्मणा प्रच्छादितम यूं कह सकते हैं। सिद्धावस्था सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म में तो छटनी की जा रही है ना, सूक्ष्म वर्णन चल रहा है। सिद्धावस्था योग्यम विशिष्ट अगुर्लघुत्वम नाम कर्मोदयन प्रच्छाद भूत कर्मोदय होना चाहिए। सिद्धावस्था के योग्य जो विशिष्ट अगुर्लघुत्व है वह नाम कर्म के उदय से प्रच्छादित है, ऐसा कहा जा रहा है। नाम कर्म क्यों विशिष्ट गुरुत्व का, गुरुत्व शब्देन उच्च गोत्र जनितम महत्व भण्यते, लघुत्व शब्देन नीच गोत्र जनितम तुच्छत्व इति, तद उभय कारण भूतेन गोत्र कर्मोदयन विशिष्ट अगुर्लघुत्व प्रच्छादितम इति। ठीक है, नीच और उच्च दो प्रकार के गोत्र कर्म है, इन दोनों के अभाव में ही अगुर्लघुत्व गुण का उद्घाटन होता है। यदि अव्यावहार गुणत्व वेदनी कर्मोदयन इति, अव्यावाद गुण का ढकना वेदने कर्म के उदय के साथ है। संक्षेप ये अष्ट गुणा नाम कर्म भी ही आच्छादनम ज्ञातव्यम, इस प्रकार संक्षेप से आठ गुणों के द्वारा आठ गुणों का ढकना आठ कर्मों के द्वारा होता है, ऐसा जान लेना चाहिए। तदेव गुणाष्टकम मुक्तावस्थायाम, वही जो गुण आठ गुण है वे मुक्तावस्था में स्वकीय स्वकीय कर्म प्रच्छादना भावे अपने अपने कर्मों के आच्छादन के अभाव में व्यक्तम भवती, व्यक्त हो जाते हैं। संक्षेप न अष्ट गुणा रक्ता, संक्षेप से यहां पर आठ गुणों का कथन किया गया है। विशेष पुनः अमूर्तत्व निर्नाम गोत्रादय साधारण असाधारण रूप अनंत गुना यथासंभव आगमा विरोधी में जातव्य। यहाँ पर तो हम संक्षेप से कह रहे हैं, विशेष रूप से अमृतत्वादिक या निर्नाम गोत्र इत्यादि जो साधारण है या साधारण है, जो अनंत गुण है, वे सारे के सारे आगम के माध्यम से जान लेना अविरोध रूप से, यहाँ पर जैसा जैसा वर्णन किया गया है। अत्र सम्यक्वादी शुद्ध गुण स्वरूप शुद्धात्मा एव उपादेय। शुद्धात्मा जो सम्यक्वादी विशुद्ध गुण स्वरूप वाला होता है, वही एकमात्र उपादेय है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्या? हाँ, नहीं पता, नहीं शायद समदर्शन को मुख्य दृष्टि मेरा करके पता है। हाँ, क्योंकि आठ गुणों में चार तत्व तो है ही नहीं, इसलिए आठ गुणों में सम्यक गुण को कहा है, असम्यक गुण कहा तो सम्यक के लिए शक्ति से है ना, मैं चाहती दर्शन तो जाती है, चार को आठ गुणों में गिरा ही नहीं, तो बचा क्यों मिलते हैं, ये बात है। विषय कषाय आसक्ताना जीवानाम ये कर्म परमाणव संबद्धा भवंती तत्कर्म इति कथयते। देखो, विषय और कषायों के कषायों में आसक्त जीव को ही कर्म रूपी परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं, यानी कोई जीव बंध को प्राप्त होते हैं जो विषय और कषा। कर्म कहां से कैसे आकर चिपकते हैं ये आप देख नहीं सकते, कर्म कब जो है आपको छोड़ करके जाते हैं आप देख नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं उस कार्य के माध्यम से। यदि हम विषय और कषाय नहीं कर रहे हैं तो कर्मों का बंध अनुपात से नहीं हो रहा है।
ओ, किरण क्यों कहो, सूर्य कहो ना, जब किरण क्यों कह रहे हो, क्या ऐसे क्यों कह रहे हो, कहो ना क्या बात।
वहां पर आप लोग पकड़ में आ जाएंगे कि चतुर्गुण स्तर में क्या गुण उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न हुआ हुआ नाश को नहीं प्राप्त होता, इसलिए अपर्यवसान कहा। लेकिन अविभागी प्रतिच्छेदों की अतिरिक्षा से देखते हैं तो उसमें अभी आना बहुत बाकी है, ये इसका अर्थ होता। शायद क्या विशेषण लगाया होगा, शायद यह जो विशेषण लगाया उसके हिसाब से लगाए, सब विशेषण लगाया होगा, इसमें कोई बाधा नहीं आती, आचार्य की अपनी अपनी विवक्षाएं होती हो, तो इसलिए नहीं होगा पठन वर्णन नहीं, ये जो अभी जितना उत्पन्न हो गया उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा, क्यों क्षयोपक्षमी के साथ औक्षमी के साथ तो घटन बटन बना रहता, इसमें नहीं होगा, जो कुछ उत्पन्न हुआ वह क्षय को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा पीछे क्षय का, लेकिन वह उत्पन्न हुआ वह अच्छी क्वालिटी का ही है, ऐसा कहीं नियम नहीं, ऐसा है ना, है तो कहा ही है, इसमें कोई बाधा नहीं, परमावगाढ़ है अवगाढ़ है, ये क्या है, ये है। हाँ, होते हैं अविभाग्य प्रतिच्छेद होते हैं, जैसे अभी हमने कहा जैसे दूसरा अंग कौन सा सम्यक दर्शन का है, निकांक्षित है, निकांक्षित है, निकांक्षित का क्या होता है, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखना, समय की रखता है क्या नहीं, आओ समय की रखता है क्या नहीं, समझ सोच है, कोई नहीं रखे, कैसे नहीं रखेगा, देखो ये तो बाद में लगाया गया है कि वह निकांक्षित तो एक कोई आकांक्षा नहीं रखना चाहिए। अच्छा सोच सुनो, अब सुन लो, वह समय की रखता है क्या नहीं, समय से डरता है कि नहीं, कहीं नहीं डरता, अब मेरा क्या होगा ऐसे नहीं करता, क्या मरू आओ क्या है, सुनो बहुत अच्छी बात है, हमारे दो ग्यायक है, तो ग्यायक कहां गए वो है, जिस प्रकार मेरा स्वभाव ग्यायक है उसी प्रकार सामने वाला का स्वभाव भी तो ग्यायक है, बात यह है धर्म की तो चल रही है, सम्यक दर्शन को छोड़ करके धर्म कौन सा बड़ा होता है, बताओ, निश्चित बात है, ऐसा नहीं है। निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा का अर्थ क्या होता है? चिकित्सा मैंने चिकित्सा अब साधु के प्रति क्या अपने शरीर के प्रति ग्लानि हो जाए, यही तो गड़बड़ है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि निर्विचिकित्सा अंग वह पूरा नहीं व्यवहार से है, निश्चय से नहीं। किसी के धर्म से आप, किसी के धर्म से आप पुद्गल, पुद्गल धर्म भी आप बता देते हैं। पुद्गल धर्म है इसका रूप मानो विकृत हो गया, अब पुद्गल का धर्म है। किसी भी धर्म से कभी भी ग्लानी नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया। किसी के धर्म से कहने से ये कोई वैष्णव है क्या हुआ और कोई है, ऐसा नहीं। किसी पदार्थ छह है, छह पदार्थ में से पुद्गल पदार्थ है, उसमें से मान लीजिए बदबू निकल रही है, बदबू निकल रही थी नाक क्यों पकड़ो है? सुनो सुनो हमें, अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्या समय दर्शन भी जो है नाक पकड़ लेता है क्योंकि वहां चौबीस दर्शन रहता नहीं, इसलिए बंद कर दीजिए आप, सोच लीजिए ऐसा नहीं। इससे स्पष्ट है कि चाहे संग दर्शन होने के उपरांत भी इसका धर्म जो है था बदबू रही थी, इसको जो गंध गुण है उसका परिणाम चल रहा है, अब नाक क्यों पकड़ो? चारित्रमाणी की वजह से तो निर्मित चिकित्सा में चारित्रमाणी में चले जाना चाहिए, तुम उसकी ओर क्यों पकड़ रहे हैं? इससे स्पष्ट है कि डरना नहीं, यह डर जो लगता है वह नौकशाह की वजह से डर लगता है, वो भी चारित्र मुनि का इधर नहीं आना चाहिए, और इच्छा जो होती है वह चारित्र मुनि की वजह से, वो भी इसमें नहीं जाना चाहिए। ये सारे सारे बातें सूक्ष्म अध्ययन कर लीजिए गोमर्थ के माध्यम से ज्ञात हो जाएगा। ये परमात्मा भावना है, इसलिए भावना ग्रंथ में हम विशेष रूप से नहीं कहना चाहते हैं। विषय कषाय में जो आसक्त जीव है उन्हीं को कर्मबंध होते हैं, आगे कहा जा रहा। विषय कषा अनुयालकन्ते, बहुत अच्छा। जीव पैसे मोहिय तेजन कम अणन, विषय और कषायों से दो रंग जाते हैं उन्हीं जीवों को वे परमाणु लग जाते हैं, लग जाते हैं मतलब बंध को प्राप्त हो जाते हैं। वे ही जीवों के प्रदेशों में आकर के मोही जीवों के प्रदेशों में आकर लग जाते हैं, उन्हीं का नाम कर्म, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। विषय कषाय ही रंजिता नाम रक्ता नाम, विषय और कषाय से जो रक्त हैं उन रंजित हैं उनको परमाणु न हा भवंती है, उन्हीं के पास आकर के परमाणु संबंध को प्राप्त होते हैं। केतु लग्ना भवंती जीव प्रदेश, जीवों के प्रदेश में आकर केशा मोहिता नाम, मोही मुक्त जीवों के लिए तान कर्म स्कंदान जिना कर्म इति कहते, उन्हीं कर्म स्कंदों को जिन कर्म ऐसा कह देते। शुद्धात्मानुभूति विलक्षण विषय कषाय, जहां पर शुद्धात्मानुभूति होती है वहां पर विषय कषाय नहीं, और जहां पर विषय कषाय है वहां पर शुद्धात्मानुभूति नहीं। सीधी सीधी बात, कोई भी आ जाए विषय कषाय रक्ता नाम स्वसमिति अभाव उपार्जित मोह कर्मोदय परिणता नाम, अपने स्वसमिति के अभाव में अर्जित जो कर्म मोह कर्म है उसके उदय से परिणत हुए जीवों को ही कर्म वर्गना योग्य स्कंदा तैल वृक्षिता नाम, जो कर्म वर्गना के योग्य स्कंद, कर्म वर्गना के योग कहा, यह बिल्कुल देशन की ही प्रणाली जैसी है। कर्म वर्गना के योग्य स्कंद, कर्म वर्गना ही नहीं, किसके द्वारा? जैसे तेल के द्वारा तेल लगाया गया किसी की बदन के ऊपर तो गंध को प्राप्त होता, धूल चिपक जाते, उसी प्रकार मल पर्याय वत् अष्टविध ज्ञानावरणादि कर्म रूपेण परिणमंती, जिस प्रकार तेल लगने से शरीर के ऊपर धूल आकर के चिपक जाती है, मल का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार मोह रूपी कर्म के उदय के साथ जो जीव रहेगा उसमें ही आठ प्रकार के पुद्गल कर्म स्कंद आकर के चिपक सकते हैं, ऐसा नहीं। अत्र यह एव विषय कषाय काले कर्मोपार्जनम करोति। जो व्यक्ति विषय और कषाय के काल में कर्म का उपार्जन करता है सहैव परमात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि काले, वही जो भीतर बैठा शक्ति के पीछे से परमात्मा, ये लगा लेना, शक्ति के पीछे से वही परमात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि के काल में साक्षात उपाधि होता है। जो बैठे बैठे काम कर रहा है अभी तक, ये तात्पर्य है। उसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ इतना ही हुआ, कर्म बंद होता नहीं होता इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि देखने में नहीं आ रहा। इतने चक्कर में पड़िए कि विषय और कषाय के कारण बंद होता है यह निश्चित रख कर लीजिए, और बंद से यदि छूटना है तो कहीं ऐसा हाथ निकाल, हाथ डाल करके कर्म को निकाल फेंकना चाहो, न भूदो न भविष्य। विषय कषाय से बचो, राग रंग से बचो, आत्म के अहित विषय कषाय बस। अब ऐसा नहीं कि स्वाध्याय करो और विषय कषाय खूब करो, हाँ, क्योंकि स्वाध्याय परम तप कहा, ऐसी कैसी बात कह रहे हो? हाँ, परम तप कहा है, क्या कह रहे? हाँ ठीक है, 24 घंटे में हम 4-5 घंटे कर लेते हैं निश्चित रूप से, बाकी समय में सब ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं, विषय और कषायों से बचने वाला व्यक्ति स्वाध्याय तो कर रहा है, स्वाध्याय में और क्या किया जाता है? स्वाध्याय इसलिए किया जा रहा है कि विषय और कषायों से बचो। जो व्यक्ति विषय कषाय से बच रहा है वो स्वाध्याय नहीं कर रहा है क्या? स्वाध्याय कर रहा है अपना अध्याय, अपना अध्याय का अर्थ क्या? अपना अध्याय क्या है? अथवा अपनी गाथा है, जीवन गाथा, अपनी गाथा स्वाध्याय। स्व अध्याय, अध्याय मैंने प्रकरण, जिसमें अपना प्रकरण आता है उसको स्वाध्याय बोलते हैं, और जिसमें अपना प्रकरण समाप्त हो जाता है वो पराध्याय हो जाता है। ये बात है, इसलिए जो विषय और कषाय नहीं कर रहा वह स्वाध्याय निष्ठ है, और विषय और कषाय नहीं करता है उन्हीं के लिए बात जाकर के कहो कि हमें भी कुछ ऐसी कृपा कर दो ताकि आप जैसे हम भी विषय और कषाय से बच जाए। ये इसका तात्पर्य है। विषय और कषाय से बचने वाला व्यक्ति मूलाचार का स्वाध्याय कर रहा, विषय और कषाय से बचने वाला व्यक्ति समय सार को कटस्थ क्या, वह बिल्कुल ही सब दुनिया को दिखा रहा। और ये ऐसी प्रेस है कि जहां कहीं भी चली जाओ किताब निकलती चली जाती, जीवन के आदि से लेकर के अंत तक जो कोई भी उसको देखेगा अपड़ भी समझ लेगा कि हाँ ये अच्छे स्वाध्याय, ये केवल समय सरकार ने एक स्थान पर लिखा है, ये केवल जिसका मन विषय और कषायों की ओर दौड़ लगाता है या चंचल है उसी के लिए ऐसे बैठ करके करने के लिए, नहीं तो हमेशा हमेशा निरीक्षित भाव से बैठ जाते हैं उनके लिए स्वाध्याय स्वाध्याय होते। धन्य है वे मुनि महाराज जो हमेशा हमेशा अपने आप में लीन रहते हैं, उपकरण भी नहीं रखते हैं, पीछे और कमंडू रख लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं रखते, भीतर ही सब कुछ रहता है उनके पास। जैसे कहा जाता, जैसे कमजोर आंख वाले के लिए चश्मा आवश्यक हो जाता है, उसी प्रकार कमजोर उपयोग वाले के लिए ही उपकरण ये भी आवश्यक हो जाता है, नहीं तो वह जांच है। अब ये बताओ कि चश्मा जो लगा था उनको आप अच्छा मानते हैं? अरे आंखों में कमजोरी होगी तभी तो चश्मा लगाया, संदेह होता दुनिया को, ठीक है। इसी प्रकार यहां जितने आप उपकरण की ओर अटैचमेंट रखेंगे ये ध्यान रखना उतना ही उसका उपयोग स्थिर नहीं, ये ज्ञात हो जाता। उन्होंने ये कहा था कि प्रतिक्रम करो, शास्त्र रखो, ऐसा नहीं कहा था, हैं? ध्यान रखो, पहले 400 हस्त लिखित एकार लिखते थे, ये हाथ से हटने से ये काम हो गया है। एकाद प्रति के माध्यम से गुरुदेव थोड़ी सी दे देते हैं और उसके माध्यम से वो उपस्थित कर लेते हैं। हाँ, वो शास्त्र नहीं थे या अब आजकल कहाँ से आ गए पता नहीं, ये कहाँ से आ गए शास्त्र? लिपिबद्ध क्यों नहीं थे? समयचर कहाँ से आया? अब उसी का नाम तो शास्त्र नहीं था, ऐसा मत को इसको तो शास्त्र कहा या औपचारिक शास्त्र कहा गया है। शास्त्र नहीं थे ऐसा नहीं, जब शास्त्र थे तो शास्त्र थे, लेकिन वह इसी ढंग से चलते थे जिसमें आरंभ कम होता था और परिग्रह भी कम होता था, अर्थ विचार कम होते थे। हमारे लिए इतना ही क्यों? ऐसा नहीं, आज एक पंक्ति ले लो, कल दूसरी 10 पंक्ति दे देंगे तुम्हें, और नहीं हमें भी तो चाहिए परमात्म प्रकाश, ठीक है ले लो, हमें दो चाहिए, क्या पता कल कोई निर्माण ले तो। ये होता आज, लेकिन पहले क्या होता था कि एक गाथा दो गाथा दी जाती थी, वह मुखार कर लेता और उसकी व्याख्या भी समझ लेता, दूसरे दो दोहा और नहीं देते, हो जाता काम। समयसार को पाठ करने के लिए कितना समय लगता? 1 घंटा 2 घंटा लग जाए, समयसार हो गया। अब 4 महीने पढ़ाना पड़ता है, किताब तो ताले में रख देते हैं, स्मरण कोई करता है ही नहीं, निश्चित बात है, ताले में रख देते हैं, कोई जी अपने पास रख लेते हैं। समय ज्यादा हो गया,